اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر اگلی آیتوں میں فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ پر، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ سب اپنے اپنے گروپس میں ہوں گے، یعنی لائک مائنڈڈ پیپل سب ایک جگہ ہوں گے، حتی اذا ما جاؤہا، جبکہ وہ اس آگ کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان. اب آپ سوچئے، کانوں سے جو سنیں گے وہ بولیں گے نا قیامت کے دن، کانوں نے بھی گواہی دینی ہے وہاں، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اب ابصارم، آنکھیں بھی گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کی چمڑیاں، کھال، بما کانوا یعملون، اس بات کی جو وہ عمل کرتے تھے. قیامت کے دن انسان کی یہ سکن بولے گی. یعنی اس وقت دیکھیے، آپ میرے سامنے یہ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، باہر کے لوگ بھی سن رہے ہیں، کئی چیزیں لگی ہوتی ہیں تو آتا ہے نا، یہ سکن جو ہے نا میری آپ کی، یہ میری آوازیں لے رہی ہے، یہ اس میں سیو ہو رہا ہے، یہ پروون ہے اس وقت بات کہ ہماری سکن ٹیپ ریکارڈنگ کا کام کرے. صرف اب ری پلے کا بٹن دبانا ہے کہ اس کو دوبارہ کیسے چلائیں. انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو دنیا سے جا چکے، جو بڑے تھنک ٹینکس تھے، جو بہت دنیا کو فائدہ دے کے، جیسے نیوٹن تھا یا بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کی آوازیں جو انہوں نے اپنے دور میں بولی تھی نا، باتیں ریسرچ کی، وہ فضا میں موجود ہیں، بس اب ہم نے اس کو کسی اگر ریپلے کر کے ان سے فائدہ لینا ہے. تو قیامت کے دن کھالیں بولیں گی. اللہ اکبر. وقالوا لجلودهم، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لم شهدتم علینا، تم آج ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شئین، ہماری کھال کہے گی کہ ہمیں تو اس نے بلا دیا جس نے ہر چیز کو بلا دیا. یہ زبان کیسے بری، آپ دیکھیں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے نا، اپنی زبان کبھی انسان آئینے میں دیکھے، ہے کیا کہتے ہیں نا، ہے بالشت بھر کی، ساری دنیا سے بندے کو یا تو عزت دلوا دیتی ہے یا ذلت دلواتی ہے. ٹیپ ریکارڈر میں کون سی زبان ہے؟ سی ڈی پلیئر میں کون سی زبان ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اس دن کہیں گے ہمیں اس نے بلایا جس نے سب کو بلایا، بہو خلقکم اول مرۃ، وہی ہے جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، یعنی جس نے پہلے کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. کیا آپ اور میں ذرا سا اپنے اسکن، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کے بارے میں تصور کی آنکھ سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف بولیں گی؟ آج ہم بیٹھے ہوں، نارمل کوئی آئے تو ہم فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، بندے کو اچھا ہی نہیں لگتا کیجوئلنیس میں کوئی دوسرا اس کو دیکھے. قیامت کے دن سب کے سامنے آنکھیں بولیں گی، یہ وہ گندی چیزیں دیکھتی تھیں، یہ کان اس کے وہ بیکاریات سنتے تھے، اور سکن کہاں سچ سچ کے جاتی تھی کھال، اور کہاں ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے تھے، ایک ایک چیز بول رہی ہوگی، اور وہ پریشان ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کا اپنا بچہ کسی کے سامنے کوئی ایسی بات بول دے جو نہیں بولنی، کتنی شرم آتی، کہتے ہیں گھر جا کے اس کو پوچھوں گی اس نے یہ بات کیوں کہی. قیامت کے دن یہ ساری جسم کے حصے ہمارے بولیں گے، وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہا تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ کبھی یہ تمہارے خلاف بھی گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سارے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہوتی. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، آج انسان یہی سوچتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، وہ ہو جائے گا، جب آئے گی کرے، جہاں سارے ہوں گے ہم بھی ہوں گے. کیا یہ جملے اللہ کے خوف کی علامت ہے؟ سارے آگ میں جائیں گے تو کیا ہم بھی چلے جائیں گے؟ فرمایا وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ تمہارا اللہ کے بارے میں گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا. ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، جو تم کر چکے اور آج تم خسارے میں ہو. یعنی یہ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ باتیں ہو رہی ہیں. فائیں یس برو، اگر آج صبر کرو، فنار، پھر بھی آگ ہی تمہارا نصیب ہے. مسلحم، تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. وہیں یس تعتبو، اور اگر عذر کرتے ہو، سوری کہتے ہو، فما ہم من المعتبین، پھر بھی تمہاری کوئی عذر بندی قبول نہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیں گے آج میں نہیں سنوں گا. اب آپ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے، اگر آئی وش کہ آپ کے سامنے قرآن ہوتا، آپ دیکھیں کہ میرے سامنے بھی یہ بالکل یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، سادہ قرآن ہے نا میرے سامنے. اگر میں اب اس کو کھول کر آپ سے اس طرح بات چیت کے انداز میں بات نہ کروں، تو یہ سادہ عربی کا میں آپ اور دو چار دس دفعہ پڑھ لیتے ادھر بیٹھ کے. قرآن کا حق تب بتاتا ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے عربی کا ٹیکسٹ کھلے اور آپ کو لگے آ گیا رب کا خط، کھول رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، ایک چھوٹا سا لیٹر آ جاتا ہے، ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، سوچ کے پڑھتے ہیں، غور کے، نہیں آتا تو کسی سے پڑھواتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ यानी मैं तो कहती हूँ मुझे पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस मौजू पे ही लोग बात करने का मौका देते रहना कि लोगों इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लो, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँ। हमारी हर मुश्किल की वजह बेदीनी की, दीन से दूरी, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बुराई में माँ बाप के आगे बदतमीजी करते हैं, शोहरों की नज़रें कहीं और हैं, बीवियाँ सुनती नहीं, सब के पीछे वजह यह है कि वो कुरान का हिस्सा जो पढ़ते हैं रोज़ नमाज में पढ़ते हैं ना, रोज़ सुबह उठ के चले मारा बांदा एक रुकू, आज भी कल्चर है हमारा पढ़ने का, समझ नहीं आता। हमें सिर्फ उतना हिस्सा जो हम रोज़ की नमाज में अदा करते हैं उतना ही समझ आ रहा होता ना, तो यकीन करें हर रोज़ हम सीधे हो जाते। क्या पढ़ के आई हूँ आज? जैसे मेरे हस्बैंड मस्जिद से आते हैं ना, तो मेरा दूसरा तीसरा सवाल यही होता है, आज कौन सी सूरतें पढ़ी, पहली रकत में कौन सी, दूसरी में कौन सी, क्योंकि इमाम साहब ज़ाहिर है ऊंची किरत कराते हैं मग़रिब इशा फजर में, तो मैं इंजॉय करती हूँ, तो अच्छा आपने ये पढ़ा वो पढ़ा समझ आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आता। तो जब कुरान के लिए कुछ वक्त लगाएंगे तो समझ आएगा ना, ये ऐसे कैसे आ सकता है? आप इस मुल्क में माशाल्लाह हॉलैंड में, और मैंने सुना डच लैंग्वेज है ना इधर, तो डच सीखेंगे तो आएगी ना, और जिन्होंने नहीं सीखी उनको आज भी नहीं आई, चाहे 20 साल से बैठे हो, गुजारा कर लेंगे किसी से पूछ के दो चार लफ्ज़ इशारे जोड़ जाड़ के, लेकिन आती तो नहीं है। कॉन्फिडेंटली आप जाके कहीं डच में स्पीच कर सकते हैं, किसी डच पर्सन के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो जिसकी ज़ुबान नहीं आती उसे दोस्ती कैसे होनी है? आज हमें ज़ुबान नहीं समझ आती कुरान की, हमारे बच्चों का दिल क्यों नहीं लगता कुरान में? वो कहते हैं अम्मी इससे तो बेहतर है आप एक उर्दू इंग्लिश का सफ़ा दें वो पढ़ लें, कुछ तो समझ आता है। तो लिहाजा इन सारी बातों को सुनते वक्त हमें ये फिक्र अपने अंदर एहसास रखना है कि हमने इस कुरान को हक देना है। रमज़ान में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये सिर्फ रमज़ान का कुरान नहीं है। आपका तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने साथियों को दौरे कुरान भी सुनने का मौका मिला कि नहीं मिला, तो फिर तो बहुत बड़ी दौलत है जिससे आप अभी दूर हैं। रियली मैं तो ये चाहूँगी कि अगर अल्लाह हमें यहाँ इस शहर में, क्या इस गांव में, इस जंगल में ले ही आया है, तो कोई यहाँ पौधा लग जाए। आप लोग जिस तरह आज बैठे हैं, आप मुझे लगता है आप सब वॉकिंग डिस्टेंस से आए हैं, ऐसे ही है ना? आप जो साथी सब बैठे हैं ना, यकीन करें आप मुझे इजाज़त दें, आज से ही आपको ट्रेनिंग दूँ और आपकी क्लास कल से शुरू कराऊँ। जिस तरह एमरजेंसी लगती है ना, एमरजेंसी बेसिस पे इस वक्त उम्मत मुस्लिमों को कुरान को सीखने की ज़रूरत है। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, जितना भी आप अपने आप को फोकस्ड करके वीकडेज में, वीकेंड्स पे, सुबह में, शाम में, जो जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आप उसके ऊपर कुरान को सीखने का इहतमाम करें। क्यों? इसलिए देखिए, अल्लाह ना करे, अब आप कहते हैं ना हम बिज़ी बहुत हैं, मैं भी बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी हैं, कई काम हम छोड़ देंगे, नहीं मसरूफ़ हैं, खुदा ना खास्ता पेट में दर्द हो, लेके जाएंगे डॉक्टर पे कि नहीं? कोई कहता है कि नहीं 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 बिज़ी बहुत हैं, डॉक्टर पे नहीं जाने का टाइम? अल्लाह ना करे बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, जाएंगे हॉस्पिटल के नहीं? अभी तो आप कह रहे थे टाइम ही नहीं है, क्यों? एमरजेंसी हो गई। तो एमरजेंसी बच्चे के गिरने, चोट लगने, पेट में दर्द से बड़ी एमरजेंसी इस वक्त ये है कि हमें कुरान समझ नहीं आता। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, ख़त्म भी करते हैं, कुरान ख्वानियाँ भी करते हैं, इसाले सवाब के तौर पर भी इसको करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। इस पे बंदा रोए, धोए, गम करे कि अल्लाह मुझे कुरान समझ क्यों नहीं आता, मैं क्यों महरूम हूँ। देखिए एक गूंगा बच्चा होता है ना, तो उसको कितनी उलझन आती है कि मैं अपनी माँ को कैसे अपनी बात समझाऊँ, और गूंगी माँ अपने बच्चे को कैसे टोकेगी। तो लिहाजा इसके लिए दुआ करें, बहुत आसान है आज के दौर में। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं जहाँ बकौल आप ही की गवाही के कोई क्लास नहीं है, यही सबने शुरू में बताया आपने, अगर है तो मेरा ख्याल है कुरान की तफसीर की नहीं है, मिलते हैं तो कहीं जाके दुरूद पढ़ा, कहीं जाके आपने ख़त्म किया कुछ, कुरान नहीं समझ आता, मसला ये है। उसके लिए फिर आपको इंशाल्लाह एंड पे एक दो प्लान देती हूँ, अगर रियली जिसको आप कहना चाहिए कि यू आर इन नीड, जिसको कहते हैं वाकई आप हकीकी तौर पर ज़रूरतमंद हैं, तो यू विल से लबैक, कि हमें ज़रूर इसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब बीमार होता है ना बंदा, ये नहीं कहता कि अच्छा मेरे शहर में डॉक्टर नहीं तो मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल ही नहीं इधर, नहीं, फिर आप दूसरे शहर जाते हैं, नहीं होता तो फिर आप दूसरे से पूछते। तो कुरान का सीखना मेरे आपके लिए इस वक्त वक्त की ज़रूरत है। गैर मुस्लिमों में हम लोग बैठे हैं, हमें अपना दीन नहीं आएगा तो हम किसी से कैसे पूछेंगे, उनको कैसे बताएंगे, दीन की बात कैसे समझाएंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं जब एक बंदा थोड़ा सा दूर होता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, वक़ैयतना लहुम कुराना, हमने उन पर कुछ साथी मुकर्रर कर दिए हैं, फ़ज़य्यनु लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जिन्होंने इनको आगे पीछे की हर चीज़ खूबसूरत करके दिखा दी। ये भी एक अल्लाह का फैसला है। जब हम फारिग वक्त सही इस्तेमाल नहीं करते ना, तो हमारी दोस्तियां बेकार लोगों से हो जाती हैं। ये देखो फैशन, ये कमीज़, ये डिज़ाइन, ये फेसबुक पे प्रिंट आ गया, ये उधर आ गया, ये सेल लग गई, ये उधर एक कंसर्ट हो रहा है, यानी बेकार मसरूफियात आती हैं। मैंने देखा है जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते वो ज़्यादा कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, और जिनको लोग कहते हैं आप बड़े मसरूफ़ हैं, मेरा ख्याल है उनके पास बहुत टाइम होता है। मुझे अपने बारे में तो इंतहाई बुरा लगता है, कोई कहता है ठीक है अच्छी बात है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी का, लेकिन लोग मैसेज छोड़े बात कर, आप मसरूफ़ बहुत हैं आपको कब करें, मेरे पास तो बहुत टाइम होता है क्यों नहीं है। हाँ ये मेरी क्लास का टाइम है, ये मीटिंग्स का, ये आप मुझे मैसेज कर लिया करें अगर मैं अवेलेबल होंगी उठा लूँगी। मैं क्यों हर वक्त लुक बिजी डू नथिंग, देखने में बड़ी मसरूफ़ हूँ और कार कुछ नहीं रही। ये सिर्फ हमारा एक दिमाग का हाल है, 24 घंटे दिए अल्लाह ने, कोई थोड़े थोड़ी है। कितना पढ़ने पढ़ाने में एक दिन में 10 घंटे भी लगा लें तो फिर भी आप किस 14 घंटे पीछे, क्या आप किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगली आयत में क्या है, जब बंदा ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं रखता ना, तो अल्लाह ताला बुरे दोस्त मुकर्रर कर देता है। पहले तो वो दोस्त आते थे दरवाजे खोल के पीटते थे, बैठो चाय पीना, अब के दोस्त ये हैं हमारे। मैं तो हैरानगी की हद तक हैरान हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलता है। मुझे ऐसे लगता था ये अब हमारे पाकिस्तानी कल्चर में आ गया है, फ़ोन हर वक्त, मासियों के हाथ में फ़ोन, बच्चों के हाथ में फ़ोन, दो दो फ़ोन, डबल सिम, वो डबल डिलाइट और फलाना फलाना। बट मैं कहती हूँ ये प्लैग, प्लैग कहते हैं जैसे वो बीमारी के, ये बीमारी पूरी दुनिया को लगी हुई है। 2 दिन पहले हम बहरी जहाज़ सवार थे, शिप पे हम ऐसे आउटिंग के लिए गए थे, तो जो शिप चला रहा था वो ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, ऑटो पायलट क्या कहते हैं, तो वो भी अपने फ़ोन से खेल रहा था, हम उसको साइड के मिरर से देख रहे थे। अब शुक्र है कि वो उसके हाथों में नहीं था, पता नहीं डुबो डुबू देता। ये आम बात है, सड़कों के किनारे, रोड्स पे, बूढ़े बच्चे जवान, आप मस्जिदों में तरावियों में जाके देख लीजिए लोग फ़ोन से खेल रहे होते हैं। मैं कहती हूँ ये कैसी मुसीबत सवार हो गई, और क्या है, मैं कहती ऐसे ऑक्सीजन मास्क की तरह इसको हाथ में रखा था। आप अपने घर में जाके देखिएगा, आपकी बच्ची, आप खुद आप फील करें। मैं अक्सर देखती हूँ कि इतने प्यार से तो कभी किसी ने पर्स भी नहीं अपना पकड़ा होगा, माँ का हाथ नहीं पकड़ा होगा जितने प्यार से इसको, नहीं। और आप ज़रा किसी यंग बच्ची का फ़ोन तो छीने, ऐसे लगेगा जैसे उसका ऑक्सीजन मास्क उतर गया। मैं इसके बगैर नहीं जी सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसमें निकल क्या रहा है। और क्या करते हैं कुरान और हदीस से, सच बताएं। मैं नहीं कहती गंदी चीज़ें देखते होंगे, मैं नहीं कहती फिल्में मूवियाँ और बेकार और सेक्स की चीज़ें देखते होंगे, जो देखते हैं उसमें क्या निकल रहा है, ये दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं आपके इस छोटे से रूम में, मेरा फ़ोन बंद कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, और आप मुझे इधर बिठा के फ़ोन खोल दें, मैं इधर कभी अमेरिका होंगी, कभी कनाडा होंगी, कभी नॉर्वे होंगी, कभी ओस्लो में होंगी, क्योंकि क्लिक क्लिक मैसेज देके मुझे आपसे ले जाएगा। आज शादी के बाद 80% बच्चियाँ जो घरों में नहीं सेट हो रही, मैं पूरे यकीन से, मेरे पास ऐसे केसेस हैं, उसकी वजह फ़ोन है। कट कट मिनट मिनट का रब्ता माँ से, ये हो गया वो हो गया। और मैंने दुखी सासों की बातें सुनी है कि बच्ची तो आई है शादी करके घर में, पर फ़ोन नहीं छोड़ती हाथ से, वहाँ मियाँ का खाने का वक्त है और वो फ़ोन पे चिटचाट हो रही है। मुझे बताएं फ़ोन घर पे साथ हैं, ये है बुरे मुजैन। मैं और यही चीज़ मैं अपने फ़ोन के आपके सामने कह रही हूँ कि इस पे इस वक्त 10 चीज़ें चल रही होंगी, मेरे से ज़्यादा भी शायद फ़ोन कोई नहीं यूज़ करता होगा, लेकिन मैं हिसाब से करती हूँ। कोई एक टेक्स्ट नहीं आता मेरे सामने, लेके अभी जब खोलूंगी तो मेरा 200-300 मैसेज आए होंगे, मैंने सब चीज़ें बंद की होती हैं, वरना ये तो क्लिक क्लिक करके मुझे ही तंग कर दे। तरीके सलीके से इस्तेमाल करें तो ये चीज़ें नेमत है। आप देखिए इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है हम दुनिया के एक जंगल में, ये कोने में आ गया आज, इस फ़ोन ने मिलाया है ना। इस वक्त आपको पता है कि हमारे साथ माशाल्लाह घरों से, यानी कुछ लोगों की आईडी से ही मुझे पता है, कनाडा से कुछ लोग सुन रहे हैं, अमेरिका से कुछ लोग सुन रहे हैं, यूके की आईडी मुझे देख रही है, पाकिस्तान की आईडी मुझे देख रही है, और जो नहीं देख रही वो तो इससे बहुत ज़्यादा है। ये किसने पॉसिबल किया, ये इस खैर ने किया। लेकिन आप बताइए हज़ारों डॉलर्स की चीज़ें मीडिया के नाम पे हमारे घरों में, लेकिन क्या ये हमें इसके ज़रिए से कोई खैर का मैसेज भी दे रहा है। एक मैसेज दे दो कोई दीन का तो वो नहीं सुना जाता, उसको डिलीट कर दो, ये मौलवी साहब हैं, ये दरस वाले, इनका तो काम ही है। तो बुरे दोस्त जब मुसल्लत करते हैं होते हैं तो उसका नुकसान कहते हैं फ़ज़य्यन लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो फिर अगली पिछली चीज़ें खुशनुमा करके दिखाते हैं। मुझे लोगों ने कहा कि अब तो शॉपिंग करना इतना आसान हो गया, क्या इधर से डिज़ाइन आता है और जोड़ा बन जाता है। फलां, यानी एक दाढ़ी वाले बाबा जी थे, पाकिस्तान की बात मुझे किसी ने सुनाई और किसी एंगल से मैंने भी देखा उसको, कि बाहर बैठी बहन बेटे की शादी का जोड़ा बनना है, बहू के लिए शादी का जोड़ा, और वो जो दुकानदार है उनको मैसेज आ रहे हैं फलां फिल्म खोलें, सुने देखें, फलां गाने या फलां मौके पे जो हीरोइन ने जोड़ा पहने ना, वो मेरी बहू का बना दें। पहले आपने बाबा जी को मजबूर किया वो फिल्म देखे, तो क्या वो जोड़ा ही देखेंगे, जोड़े वाली नहीं देखेंगे। देखिए एक गैर महसूस तरीके से ये चीज़ें हमारे अंदर घुसी हैं, और बीमारी इसलिए कि हमारे पास मकसद कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी खैर है आज, और ये सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि जो बामकसद इंसान है उसके लिए ये खैर है, और जो बेकार और बेमकसद इंसान है उसके लिए ये शर है। ज़रूरत है इस बात की कि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। फिर फरमाया वह हक अलैहि मुल्क औलु फी उम्मे, उन पे साबित हो गई वही बात जो पिछलों पे हुई थी। कद खलत मिन कबलिहिम मिन अल जिन्नी वल इंसी, जो जिन्नों और इंसानों में गुजर गए, क्या इन्नहुम कानू खासिरीन, खसारे वाले थे ये पलट गए लोग। इतनी बात का खुलासा करके क्या समझ आई बात, कि जब भी कौमों पे अजाब आया उसके पीछे वजूहात होती हैं। ईमान की कमी, तकवा की कमी, बुरे साथियों का मुसल्लत होना, और जो ज़िंदगी का मकसद था उसको हासिल ना करना। अब आखिरी आयत है जिस पे आज हम बात करके अपनी बात पूरी करेंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफरू, और कहा इन काफिरों ने, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को ना सुनना। कुरान के लफ्ज़ हैं ला तस्मऊ, मत सुनना, लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को ना सुनना। और क्या करो, वलगौ फीही, गुलगपाड़े करो, इसमें शोर गुल करो, बातें करो बीच में, बीच में इधर उधर की बहसें छेड़ दो, उल्टे सीधे सवाल जवाब शुरू कर दो, डिस्ट्रैक्शंस ऐसी डाल दो, क्यों, लाल लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ। देखिए ये 1400 साल पहले से ये आयत है कुरान में, और आज भी ये इतनी सच्ची आयत है कि आज भी लोगों को इस कुरान से दूर करने के लिए हर मुमकिन हरवा इस्तेमाल हो रहा है। ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, आप देखिए, आप कुरान नमाज पढ़ना चाहें पढ़ें, कोई नहीं रोकता, जितनी मर्जी पढ़ें, क्योंकि पढ़ रहे हैं क्या पता ही कोई नहीं, बस फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। रोज़े रखें, फ़र्ज़ भी रखें, सुन्नत भी रखें, नफिल भी रखें, कोई कोई नहीं रोकता आपको। आप 500 दाने की तस्बीह लेकर बैठ जाएं, चौक में बैठ जाएं, कोई नहीं रोकेगा, बल्कि आपसे जाके पानी ही दम करवा लेंगे, अम्मा जी हमें दम कर दें। पर जब आप कुरान खोल के सुनते हैं, पढ़ने के लिए सुनते हैं, सीखने के लिए सुनते हैं, सब के एतराज़ात इस पे उठते हैं। शैतान इसको मुश्किल करता है, क्यों, असल तब्दीली जो बंदे में आती है ना, वो इस कुरान को पढ़ के आती है। अल्लाह ताला ने इन आयतों को हमारे सामने खोल कर क्या बताया है, कि वो ना सुनवाने की कोशिशें कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम सुनने की कितनी कोशिश कर रहे हो? उनको तो जो अल्लाह ने देना है वो तो अगली आयतों में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे आपके लिए जो बात है वो क्या है, क्या हम इस कुरान को सीखने समझने के लिए तैयार हैं? हम अपने बच्चों के लिए कुरान की फ़िक्र क्या करते हैं? माजरत के साथ मुझे बिल्कुल नहीं पता आप में से किसके छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं भी हैं कि नहीं, आपको पता, पहली दफ़ा आपकी इस ज़मीन पर कदम रखे हैं। लेकिन हमें भी अपने बच्चों के जिस कुरान का फ़िक्र होता है ना, वो नाज़रा कुरान है। उस्तानी जी पहले आके पढ़ाती थी, खाला जी के घर जाते थे, कोई मस्जिदों में बच्चे कारी साहब से पढ़ते थे, अब उसकी जगह स्काइप ने ले ली है। स्काइप क्लासेस, स्काइप पे बच्चे को 30-35 यूरो देते हैं महीने के, और जाके बच्चों को पढ़वा लेते हैं। वो कुरान जिसको सिर्फ अरबी के साथ बच्चों ने पढ़ा, लेकिन आपने उसका मतलब भी नहीं समझाया, वो ये कुरान नहीं है। हमारा कल्चर है, कहते एक दो कुरान पूरा हो जाए, मुर्दा बख्शा क्या, आज बिस्मिल्लाह हो रही है, कल आमीन हो जाएगी, कोई जोड़ा निकाल के मौलवी साहब को दे, और चलो जी बच्चे को कुरान पढ़ा दिए। हालांकि इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम खुद कुरान को सीखें, और इसका तरीका कार क्या है, देखिए बहुत आसान है। आप माशाल्लाह इधर सब सिस्टर्स हैं, आप इजाज़त दें, किसी एक के घर में हम आपके लिए पूरी सेटिंग कर सकते हैं। आपने ऐसे ही बैठ के सुनना है जैसे इस वक्त सुन रहे हैं, फ़र्क आपको इतना ही लगेगा कि इधर मैं सामने, उधर लगेगा साथ वाले कमरे से बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। शक्ल से तो कुछ होता नहीं, अभी तो आप दर सुन रहे हैं तो मुझे देख रहे हैं ना, लेकिन अगर आप कुरान सामने खोल कर कोई लिखना चाह रहा है, कोई सुन रहा है, तो टीचर को देखने का मौका ही नहीं होता। यकीन करें जो संजीदा क्लासें होती हैं वहाँ टीचर को कोई नहीं देखता, क्योंकि देखेंगे तो डांट खाएंगे कि देख क्या रहे हैं आप, लिखिए, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप वाकई सीरियसली करना चाहते हैं, और ये बात भी आपको बता दूँ, जिस चीज़ का बीज डल जाए उसकी नीयत कर लें, उसको शुरू कर देना, तो वो काम शुरू हो जाता है। और अगर आप कहते अच्छा सोचते हैं, पूछते हैं, मशवरा करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे, फिर नहीं होता। तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, आप में से कोई सिस्टर ऐसी जिनको थोड़ा बहुत भी बात करने का ढंग है, या कोई किसी की तजवीद अगर बेहतर है, या अरबी का एक्सेंट ठीक है, वो भी इसमें साथ हेल्प कर सकती हैं। आपको पूरी ऑडियोज लिंक के साथ दी जाती हैं, यदि ये काम हमारा है, शर्त ये कि अगर आप लोग करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें अब दो नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। आप में जिनको शौक है, थोड़ा सा हम आपको बता के आपको उन कोर्सेज के साथ हुकअप कराते हैं। लेकिन सारी चीज़ों के लिए संजीदगी की ज़रूरत है। अगर आप में संजीदा ना होते तो कभी मैट्रिक भी ना करते। सच्ची जो बात है, जो बच्चे भी आज डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बने हैं, वो संजीदगी से बने हैं ना। मैं जो फीलिंग देना चाहती हूँ ये कि हमें कुरान के लिए संजीदा होना पड़ेगा। ये स्वाब के लिए नहीं आपने पढ़ना, वो तो स्वाब लेना तो बड़ी बात ही कोई नहीं है। आप जो नेकी आसान लगती है उसका स्वाब ले लें। इसको आपने एक मिशन बना के कि आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि 4 शवाल हो गई है, अगले साल के रमज़ान तक के लिए अपना हदफ बनाएं। 11 महीने हैं तकरीबन, जब अगले साल रमज़ान में तरावी में पहला सवारा सुनो तो मुझे समझ आ रहा हो, तर्जमा समझ आ रहा हो, कारी साहब पढ़े। यकीन करें, जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा और उसके बाद जब तरावी आई, मुझे लगे पकारी साहब इतनी जल्दी पढ़ गए सवारा आज। पहले कभी एक पाँव पे खड़े होते थे, कभी दूसरी पर सफ़े गिनते, हाय कब होगा। जब समझ आता है तो ऐसे लगता है कहानी। आप देखें ना, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एहसास भी हुआ होगा कि 58 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, 2 मिनट का मैं 1 घंटा। और अगर आप में से किसी को उर्दू ना आती होती तो आप बैठ सकते थे। यही फ़र्क है। ला तस्मो लिहाज़ल कुरान, क्यों बलगौ फी लगवियात बहुत है। चले, काफ़ी है मेरा ख्याल है इतना टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، يا الله ہمیں اخلاص عطا فرما، يا الله برکت عطا فرما، يا الله سب ساتھیوں کا آنا بلانا بیٹھنا قبول فرما. يا الله ہماری جس بہن نے یہ کوشش کی اور جس نے بھی اس میں تعاون کیا اور مدد کی، یا اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما. یا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے ساتھ یا اللہ دین دنیا کے بہترین معاون بنا. یا اللہ اس گھر کے بیماروں کو صحت اور عافیت دے، یا اللہ ان کی اس بہن کو صحت اور عافیت دے. یا اللہ ہم سب کے سب رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو بھی کسی مشکل میں اس کو اس سے نکال دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا فضل فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، اور جو دنیا میں ہے یا اللہ ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا. یا اللہ ان کو ہمارے لیے دعائیں کرتا رکھ. اور یا اللہ ماں باپ کچھ بھی نہ دے سکے لیکن ان کی دعائیں بہت کچھ دلاتی ہیں. یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں اور ہم ان کی دعائیں لے سکیں. یا اللہ جہاں بھی ساتھی دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ اپنی رحمت سے ان کو اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما. اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ہمارے آج کے اس سفر میں ایسی برکت ڈال دے کہ یہاں ایک باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس راستے میں اگر کوئی مشکل آئے، کوئی چھوٹی موٹی قربانی بھی دینی پڑے، تو اے اللہ ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے تیرا دین سیکھ سکیں. یا اللہ قیامت کے دن ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ایک کتاب نہ سیکھ سکے، ایک کتاب تو نے دی ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. اور یا اللہ اگر ہم آج نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنی اولادوں کو کیسے سکھائیں گے اور کیسے وہ آگے اپنی نسلوں کو سکھائیں گی. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں الحاد آ جائے اور ہماری نسلوں میں سے اسلام نکل جائے. یا اللہ جو ساتھی اس وقت بھی اور بعد میں بھی گھروں سے سنیں گے ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما. اور جو بھی جہاں دین کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو جس قسم کی نیکی میں بھی ہے یا اللہ اس کی وہ نیکی قبول فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو ایک مقصد دے، بیکاریت سے بچا. اور یا اللہ تو ہمیں آخری دم تک اسی کام میں لگائے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا اور ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے محروم نہ ہونا پڑے. اور یا اللہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ اور کہہ نہیں پا رہے، آپ ان دعاؤں کو بھی سنتے ہیں. یا اللہ آپ ان کی وہ دعائیں بھی قبول فرمائیں، ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھنا. اور یا اللہ رمضان کے آنے کے بعد، اگلے رمضان تک हमें इस किताब से इतना कुर्ब दे दे कि अगले साल का रमज़ान हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बन जाए। जो कोशिशें की हैं इसमें इसको कबूलियत और बरकत वाली बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तूब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।